लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 14 जून को ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त के महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो। Oggi in Italia e in altre nazioni si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo, il Corpus Domini. Nella seconda lettura della liturgia odierna, San Paolo risveglia la nostra fede in questo mistero di comunione.
Atti priye bhaiyo em behnon suprabhat. आज इटली एवं अन्य देशों में ख्रिस्त के पावन शरीर एवं रक्त का महापर्व कॉर्पस क्रिस्ती मनाया जाता है। आज की धर्म विधि के दूसरे पाठ में संत पौलुस यूखरिस्त समारोह की व्याख्या करते हैं। वे आशीष के प्याला पीने एवं रोटी तोड़ने के दो प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं, रहस्यात्मक प्रभाव एवं सामुदायिक प्रभाव। प्रेरित कहते हैं, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना करते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? संत पापा ने कहा,
queste parole esprimono l'effetto mistico o possiamo dire l'effetto spirituale dell'Eucaristia।
ये शब्द रहस्य को प्रकट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि यूखरिस्त के आध्यात्मिक प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। यह ख्रिस्त के साथ हमारे संबंध को बतलाता है, जो रोटी और दाखरस में अपने आप को हमारी मुक्ति के लिए हमें अर्पित करते हैं। यीशु पौत्र यूखरिस्त संस्कार में उपस्थित है, हमें पोषित करने, हमारे साथ आत्मसात करने के लिए, जो हर पड़ाव या पतन के बाद नवीनीकरण की शक्ति एवं आगे बढ़ने की चाह प्रदान करता है। किंतु इसके लिए हमारी स्वीकृति की आवश्यकता है, हमारे सोचने एवं कार्य करने के तरीके में बदलाव लाने की तत्परता की आवश्यकता है। अन्यथा हम जिस यूखरिस्त समारोह में भाग लेते हैं वह मात्र खाली एवं औपचारिक अनुष्ठान मात्र रह जाएगा, और जब कोई मिस्सा जाता है तो वह केवल एक सामाजिक समारोह या सम्मान दिखाने का अवसर मात्र रह जाएगा, जबकि इसका रहस्य कुछ और है। वहाँ यीशु उपस्थित हैं एवं हमें पोषित करने आते हैं। दूसरा प्रभाव है सामुदायिक, जिसको संत पौलुस इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। क्योंकि रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं। संत पापा ने कहा कि यह उन लोगों की आपसी एकता है जो यूखरिस्त में भाग लेते हैं, वे एक शरीर बन जाते हैं, उसी तरह एक रोटी तोड़ी और बांटी जाती है।
Siamo comunità nutriti dal corpo e il sangue di Cristo।
हम एक समुदाय हैं जो ख्रिस्त के शरीर और रक्त से पोषित किए जाते हैं। यह ख्रिस्त के शरीर के साथ एकता, समन्वय, एकजुटता एवं बांटने का चिन्ह है। आपसी भाईचारा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किए बिना हम यूखरिस्ट में निष्ठापूर्वक भाग नहीं ले सकते, किंतु प्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि इसके लिए हमारी मानवीय शक्ति मात्र काफी नहीं है। दूसरी ओर वे यह भी जानते हैं कि उनके शिष्यों के बीच विरोध, ईर्ष्या, पूर्वग्रह, विभाजन आदि के प्रलोभन हमेशा बने रहेंगे। हम इन सब के प्रति सचेत हैं, यही कारण है कि उन्होंने अपने सच्चे, ठोस एवं स्थायी उपस्थिति के चिन्ह को हमारे लिए छोड़ दिया है। जिससे कि उनके साथ संयुक्त होकर हम हमेशा भ्रातृत्व प्रेम की कृपा को प्राप्त कर सकें।
Rimanete nel mio amore, ha detto Gesù, ed è possibile grazie all'Eucaristia rimanere nell'amicizia, nell'amore.
Gesù कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, जो पौत्र यूखरिस्त के द्वारा संभव है, जिसके द्वारा हम उनकी मित्रता एवं प्रेम में बने रह सकते हैं। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त के दो फल हैं, ख्रिस्त के साथ एकता एवं उनके द्वारा पोषित लोगों के बीच एकता, ख्रिस्त समुदाय को उत्पन्न करता एवं उसे लगातार नवीकृत करता है। कलीसिया संस्कार बनाती है, किंतु यह अधिक मौलिक है कि यूखरिस्त कलीसिया का निर्माण करता और मिशन को जारी रखता है। यही यूखरिस्त एकता का रहस्य है, यीशु को ग्रहण करना जिससे कि वे हमें अंदर से परिवर्तित कर दें, यीशु को ग्रहण करना ताकि हम उनमें संयुक्त रहें, ना कि उनसे अलग हो जाएं। तब संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना की कि धन्य कुंवारी मरियम, हमें इस महान वरदान को विस्मय एवं कृतज्ञता के साथ स्वीकार करने की कृपा दे, जिसको यीशु ने अपने शरीर एवं रक्त के पावन संस्कार द्वारा प्रदान किया है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने बड़े दुख के साथ लीबिया की स्थिति की याद की।
Seguo con apprensione e anche con dolore la drammatica situazione in Libia.
मैं बड़े भय एवं दुख के साथ लीबिया में संकट की स्थिति की याद करता हूँ। इन दिनों मैंने इसके लिए प्रार्थना की है। मैं अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों एवं जिन्हें राजनीतिक और सैन्य जिम्मेदारी है, उनसे देश में शांति, स्थिरता और एकता की ओर अग्रसर होने के लिए दृढ़ विश्वास के साथ और हिंसा की समाप्ति की राह की तलाश करने की अपील करता हूँ। मैं उन हजारों अप्रवासियों, शरणार्थियों, शरण चाहने वालों तथा लीबिया में शरण खोजने वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। वे अपने को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ की स्वास्थ्य स्थिति पहले से बिगड़ी हुई है, जो उन्हें अधिक कमजोर और शोषण तथा हिंसा की शिकार बनाती है। वहाँ क्रूरता भरा है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की।
Per favore, esorto gli organismi internazionali e quanti hanno responsabilità politiche e militari a rilanciare con convinzione e risolutezza la ricerca di un cammino verso la cessazione delle violenze.
वह उनके दुखों को समझे, उनके लिए रास्ता खोजे और उनकी सुरक्षा, सम्मानपूर्ण स्थिति एवं आशामय भविष्य का इंतजाम करे। संत पापा ने कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी इस जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। इसके बाद संत पापा ने लीबिया के लिए मौन प्रार्थना का आह्वान किया। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व रक्तदान दिवस की याद दिलाई। उन्होंने कहा, आज विश्व रक्तदान दाता दिवस है। यह समाज को एकात्मकता एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रोत्साहन देने का अवसर है। संत पापा ने रक्तदान के सभी स्वयंसेवकों का अभिवादन किया तथा उन सभी की सराहना की जो रक्तदान के साधारण किंतु महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करते हैं। और अंत में उन्होंने रोम के विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया तथा संचार माध्यम से जुड़े सभी लोगों के लिए शुभ रविवार की कामना की और अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए उन्होंने विश्वासियों से विदा लिया।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
शिष्यों के संग प्रभु भोजन पर बैठे, उस अंतिम भोजन में रोटी लेके, रोटी तोड़ कर उनको देने लगे। खाओ ये रोटी शरीर जो मेरा
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को कॉर्पस क्रिस्टी के पर्व के दिन संत पेत्रुस महागिरजाघर में करीब 50 विश्वासियों के साथ मिलकर पवित्र मिसा बलिदान का अनुष्ठान किया। पवित्र परम प्रसाद धर्म विधि के बाद कुछ समय के लिए पवित्र सैक्रामेंट के आराधना और अंतिम समारोही आशीष के साथ पवित्र मिसा समारोह सम्पन्न किया गया। संत पापा फ्रांसिस ने अपने प्रवचन में ईश्वर के कई उपहारों को याद करने के महत्व पर विचार किया। यादों के बिना हम खुद को उस मिट्टी से अलग कर देते हैं जो हमारा पोषण करती है, और हम खुद को पत्तियों की तरह हवा के झोंकों से दूर ले जाने देते हैं। संत पापा ने कहा कि याद रखने का कार्य हमें अपने सबसे मजबूत संबंधों को पुनर्निर्माण करने में मदद करता है और हमें एक बड़ी कहानी का हिस्सा महसूस कराता है। स्मृति कभी व्यक्तिगत नहीं होती, यह वह रास्ता है जो हमें ईश्वर और दूसरों से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि बाइबल यह बताती है कि कैसे प्रभु के साथ हमारा रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी बताते हुए चली आ रही है। संत पापा ने पूछा कि क्या होता है जब यादों के प्रसारण की श्रृंखला टूट जाती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, ईश्वर जानते हैं कि हमारी यादें कितनी कमजोर हो सकती हैं। इस वजह से उसने हमें एक यादगार छोड़ दिया जो शब्दों या संकेतों से ज्यादा ठोस है। उन्होंने हमें भोजन दिया क्योंकि हमने जो कुछ चखा है उसे भूलना आसान नहीं है। उसने हमारे लिए रोटी छोड़ दिया जिसमें वे वास्तव में मौजूद हैं, जिंदा और सच्चा, उसके प्यार के सभी स्वाद के साथ। संत पापा ने कहा, पवित्र परम प्रसाद केवल स्मृति नहीं है, यह एक सच्चाई है। पवित्र मिसा में यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में हम सहभागी होते हैं। संत पापा ने तब हमारी कमजोर याददाश्त के तीन पहलुओं पर प्रकाश डाला जिसे यूखरिस्त ठीक करता है। प्रभु के शरीर और रक्त का समारोह हमारी अनाथ स्मृति को ठीक करता है। बहुत से लोगों के पास प्यार की कमी और निराशाओं की कड़वी यादें हैं जिसके कारण उनका दिल प्रेम महसूस करने के बजाय अकेला और अनाथ हो जाता है। हालांकि ईश्वर हमारी स्मृति को अपने प्रेम से भरकर हमें चंगा करते हैं जो हमारे दर्द से बड़ा है। यूखरिस्त हमारे पिता का वह अनोखा प्यार है जो हमारे अनाथ होने की भावना को ठीक करता है या हमारे दिलों में पवित्र आत्मा के प्यार से भर देता है। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त हमारी नकारात्मक स्मृति को भी ठीक करता है जो पूरी तरह से हमारी समस्याओं और त्रुटियों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यूखरिस्त हमें उदासी से छुटकारा देता है क्योंकि यूखरिस्त में हमारी नकारात्मक स्मृति की एंटीबॉडीज हैं। इस प्रकार हम ईश्वर वाहक में बदल जाते हैं, आनंद के वाहक बनते हैं। उधर न्यूजीलैंड के कैथोलिक धर्माध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस से प्रेरित होकर 21 जून को शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए वार्षिक प्रार्थना दिवस आयोजित कर रहे हैं। प्रार्थना दिवस की विषय वस्तु है, आपका भाई या बहन कहाँ है। संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक विश्व पत्र एवांजेलियम गाउडियम से लिया गया है। संत पापा का कहना है कि उनके पास हमेशा उन लोगों की व्यथा थी जो विभिन्न प्रकार के मानव तस्करी के शिकार थे। न्यूजीलैंड कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस रविवार के बाद के दिनों में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए प्रार्थना का दिन निश्चित करता है। इस वर्ष 20 जून को तय किया गया है। न्यूजीलैंड के संदर्भ में कैथोलिक समुदायों को कोविड-19, आर्थिक कठिनाइयों, नौकरी के नुकसान और मानवीय शोषण पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां प्रवासी समुदाय सबसे कमजोर स्थिति में है। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। धर्माध्यक्षों ने बताया कि न्यूजीलैंड में सरकार ने न्यूजीलैंड के लोगों को आपातकालीन लाभ प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि कार्यबल का बड़ा हिस्सा जो लापता है वे प्रवासी श्रमिक हैं। वे बताते हैं कि महामारी से पहले भी प्रवासी श्रमिकों का शोषण एक गंभीर समस्या थी, जिसे न्यूजीलैंड सरकार ने भी समीक्षा करके स्वीकार किया है। संत पापा फ्रांसिस स्वीकार करते हैं कि मानव शोषण पर काबू पाने के लिए बड़े ही साहस, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसे हम सभी को करना चाहिए। संत पापा हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी आंखें खोलें, उन लोगों के दुख को देखें और अनुभव करें जो पूरी तरह से अपनी गरिमा और स्वतंत्रता से वंचित हैं और मदद की गुहार कर रहे हैं। हम उनके क्रंदन को सुनें और उनकी मदद में आगे आएं। हफ्तों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस द्वारा एक और काले व्यक्ति की हत्या के बाद यूएस और दुनिया भर में नस्लवाद विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अटलांटा के एक पुलिस अधिकारी को सप्ताहांत में 27 वर्षीय रिचर्ड ब्रूक्स की हत्या के बाद निकाल दिया गया है। वेंडी रेस्तरां के बाहर अपने कार में सोते हुए 27 वर्षीय रिचर्ड ब्रूक्स की बुरी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार रात को इस हत्या के विरोध प्रदर्शनकारियों ने रेस्तरां को आग लगा दी। बीते 3 सप्ताह में पुलिस हिरासत में एक काली अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद से पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रशासन का कहना है कि शुक्रवार को झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी एरिका शीडस ने 27 वर्षीय रिचर्ड ब्रूक्स को गोली मार दी थी। मेयर काइशा ने बताया कि एरिका शीडस ने शनिवार को अपना इस्तीफा दे दिया। एरिका शील्ड्स दिसंबर 2016 से पुलिस प्रमुख के पद पर थी और अटलांटा पुलिस विभाग में 20 सालों से काम कर रही थी। उधर कोरोना वायरस महामारी के परिणामों से निपटने के लिए केन्या के नेरी महाधर्म प्रांत ने गुड शेपर्ड नामक सलाहकार और सहायता केंद्र की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से स्वास्थ्य संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित लोगों और परिवारों को मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान करना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।